आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव शुरू। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों में सीवर लाइन के पूरी तरह से संचालन के संबंध में रिपोर्ट तलब की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। और उत्तरकाशी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद अब स्थिति सामान्य। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। देहरादून के थानों में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का रंगारंग शुभारंभ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से महोत्सव शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 3 दिवसीय महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करेगा, साथ ही प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें हमारा पोषण करती हैं, लेखकों की रचनाएं समाज को नई दिशा दिखाने के साथ ही सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों में सीवर लाइन के पूरी तरह से संचालन के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने सचिवालय में केंद्र पोषित अमृत योजना के दूसरे चरण के तहत गठित हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित सचिव को इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती रतूड़ी ने विशेष रूप से देहरादून का सीवर सिस्टम मैप तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने देहरादून जैसे शहरों में सरकारी आवासीय कॉलोनियों में सीवर सिस्टम की स्थिति और एसटीपी से कनेक्टिविटी के संबंध में जल संस्थान को तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं मुख्य सचिव ने सचिवालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन करने वाले जिलों की रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मिशन के तहत योजनाओं की भौतिकीय प्रगति, वित्तीय समापन, एक्शन टेकन रिपोर्ट और गांवों की हर घर जल प्रमाणीकरण की रिपोर्ट तलब की। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत देते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को फील्ड कार्यों की लगातार निगरानी व निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी के साथ तकनीकी टीम को सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जल संस्थान या जल मिशन द्वारा किसी भी स्थिति में जिलाधिकारी की अनुमति के बिना रोड कटिंग के कार्यों को नहीं किया जाएगा। प्रदेश के जनगणना मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देहरादून विधान भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र से कभी भी जनगणना के संकेत मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं।
अभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना होगा। जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग है सक्रिय हो।
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी को लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम इस क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने वाले कोचों को दिया जाता है। पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ी, कोच और संस्था 14 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर आवेदन जमा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति खन्ना को 11 नवंबर से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और 13 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 18 जनवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों में काम किया और अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए। उत्तरकाशी में कल जनाक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। इस बीच उत्तरकाशी में अब स्थिति सामान्य है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने लोगों से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है।
पूरी तरह से शांति व्यवस्था उत्तरकाशी जनपद में कायम है। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी, उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था, तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से तितर बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। इसमें अब 5 से ज्यादा लोगों का समूह एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता।
उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी देहरादून सहित 13 शहरों में वायु गुणवत्ता की जांच के लिए AQI की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में AQI की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, जो 7 नवंबर तक जारी रहेगी।
विभिन्न स्थानों पर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये हमारे देहरादून में, ऋषिकेश में और टिहरी में हमने अपने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दीपावली के समय पर स्थापित किए हैं और ये मॉनिटरिंग जो है 7 नवंबर तक लगातार की जाएगी मॉनिटरिंग।
रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अगस्त्यमुनि क्रीड़ा भवन में बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तय समय पर पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना व स्ट्रांग रूम के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी ने मतगणना हॉल में बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था के साथ ही CCTV लगाने के भी निर्देश दिए।
इसका एक पूरा प्रोफॉर्मा एक प्लॉट बना करके हमें भेजना होता है, जिस पर अप्रूवल के अनुसार ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो संबंध में जो हमारे EVM के जो स्ट्रांग रूम रहेगा उसका देखा गया, और साथ ही साथ में जो EVM का काउंटिंग हॉल रहेगा, साथ में ATPBS जहां स्कैनिंग होगी और जहां पे पोस्टल बैलेट काउंट होंगे, उन सबके लिए भी तैयारी की गई है। साथ ही साथ में जो हमारे EVM में जब काउंटिंग हो रही होगी या हमारी जब स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी रहेंगी, उसका भी जो डिस्प्ले है वो कहां पे रहेगा, जहां पे हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो देख सकें या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब तक वो मशीन स्ट्रांग रूम में रखी है उसका निरीक्षण कर सके, वो जगह भी देखी गई है।
वहीं पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कौंडे ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगभग 1000 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। इसमें पुलिस विभाग सहित CAPF, होमगार्ड और स्थानीय बलों के कार्मिक तैनात किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव शुरू। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों में सीवर लाइन के पूरी तरह से संचालन के संबंध में रिपोर्ट तलब की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और उत्तरकाशी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद अब स्थिति सामान्य। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।